of living.
नमस्कार, ओम शांति और स्वागत है आप सभी का महिला प्रभाग के दूसरे दिवस के इस कॉन्फ्रेंस के दिन में। आज के सुबह के सत्र में विषय ही बहुत ही सुंदर है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ वुमेन। अगर महिलाओं का संपूर्ण विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है, तो शायद समाज में भी उसके बदलाव देखने को मिलते हैं, उसके असर देखने को मिलता है। आइए इस सत्र की शुरुआत करते हैं और आज हम सुनते हैं हमारे वक्ताओं से। इस सत्र की अध्यक्षा हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी सुदेश दीदी जी हैं, जो ब्रह्मा कुमारी इसके यूरोप और जर्मनी की सेवा केंद्रों की निदेशिका हैं। अपने अनेकों दशकों के आध्यात्मिक यात्रा में उन्होंने हजारों लोगों को आध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर किया है। पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से वो ब्रह्मा कुमारी इसकी सेवाओं को देश विदेश में फैलाने के जिम्मेदार हैं। इतने लंबी आध्यात्मिक यात्रा में दीदी जी ने लाखों लोगों को मार्गदर्शन दिया है। भारत के आध्यात्म को देश विदेश में इसकी ज्योति को जलाए रखने की, इसके प्रकाश को चहुं ओर फैलाने में उनका योगदान काबिले तारीफ है। आज ये हमारा सौभाग्य है कि दीदी जी हमारे साथ जुड़े हैं। आइए सुनते हैं उनके वक्तव्य।
ग्रीटिंग्स ऑफ पीस एंड ओम शांति। As I am sharing the thoughts on the holistic development of women, I was thinking that is it the women have to given the speciality credit to have self-development, or it depends on the society, system, culture has been there for a long period of time. And as the time is changing, the awareness is changing. And I'm sure women themselves are also aware of their personal development, holistic development in every aspect of taking care of their health, their society system, their culture, their responsibility, their skills, and also their rights and responsibility. Generally, it is said that perhaps women are not given the opportunity. But today I want to draw attention of my sisters, my elderly mothers, women. Let there be now a deep change take place in the consciousness. When they get the news of that there is going to be a girl in the family going to be born. So what is the attitude at that time of the mother, grandmother, uncle, auntie, father, all this? So this kind of heaviness, that unwanted kind of welcome, actually it is like suppressing the inner potential of the soul, the energy, a shakti, a power that is going to be a new addition in this society. It is said when a daughter-in-law comes in the home, they say Lakshmi is coming. They think Lakshmi should come. They want Lakshmi should come. But Lakshmi does not become Lakshmi when she is married. Lakshmi is when she is born, when that attitude is there. It means her development would be of the same with care, विद लव विद रेस्पेक्ट विद ऑल काइंड ऑफ जॉय दैट शी फाइंड्स इन अराउंड हर सेल्फ. सो दीज आर द सटल थिंग्स दैट फर्स्ट इफेक्ट ऑन द माइंड एज वेल एज ऑन द बॉडी. And I have been, when this motto has been always in the society for a long time, Beti bachao, Beti padhao, at least has changed some attitude. And also gender discrimination laws have been made in the society, has changed a little bit of attitude, but that is just like something is forcing them to do. But no, it's very important, the foundation, when the seed is given a proper environment to grow, that tree, that seed, which has a full of potential to bring many, many fruits, greenery, freshness, environment, sustenance, income, that one tree can become a garden, one seed can become a very flourishing environment. So every little person in the family is, of course, contributes to the development of the girl, women, and it's a holistic development, means that she herself also have to have that consciousness that when I am a woman, I am not, because of the society thinks that it's a lower energy level, but it's not. All the power and love and encouragement that the mother is giving to the child, the mother is known as the first teacher of the child. And so that child is going to be a man one day. And so what kind of training as a mother I am giving to a child to give respect to first in the family to sister, respect for the mother, respect for the grandfather, grandmother. So then equality is filled, so harmony is created, respect is created. So holistic development, external giving by others, supported by others, but I would like to make aware of my sisters that we have to develop our own consciousness of taking care of our body, our health, because health is also wealth. Making sure that our time is not wasted in worrying, in fear, in tension. So then it means that my own inner psychology and my internal power is not developing. So I am also responsible for myself. Even there is a situation, very difficult situation in the family, due to different reason, because of the personality conflict, or sometime there is shortage of wealth, sometime there is a sudden situation is there that you need to work hard. It's okay, because it's part of the life. But internal power development means the state of mind must be very, very powerful, in that I can keep my self-respect. When there is a pressure from others, and then they consider that the women are ignored, not respected, not given time them to working, and or what is happening now? Okay, they get the job, and still they have to do the same work of the whole cooking early morning, to get up early morning, to do the cooking, cleaning, washing, then whole weekdays, whatever is clothes for the children or for husband is there. She is taking the double responsibility. Definitely it will be pressure on the body as well as pressure on the mind. And when the body and mind both get tired, then there is a reaction, certainly, that tension is created, and that creates the feeling of health is also going down, and mental power is not being with that freshness developed. So this is why it's also a balance is also important, that those who are supporting other, the family has to support them, others have to support them as well. And it means that each individual has the wisdom to protect the self and develop the self, to keep the environment very fresh and powerful with self-respect. Not that, what can I do? Situation is like that. What can I do? My problems are there, that. It is, what can I do? It means that I can clear what I can do and what I cannot do. Certainly, I can do something good for myself, and then I am able to do good for others. And so this is why its wisdom is required. And in fact, woman means wisdom of man. It's a mother who is giving the guidance to the child. And one can be example for the whole society. One teacher in the school can become a very powerful trainer for the children. One, just like one member of the society, can work like the light in the house. And so mothers, women are the beauty of the house. Women are the protector of the house. They, of course, they are care the family, but also they have to care also their health. They have to care that how the other people are treating them, respecting them. And the more we stay in self-respect and aware of our original qualities are, so reminding yourself, ourselves, our original powers, and time to time in history, in society, there has been example of Jhansi Ki Rani, very brave women, very great, courageous, you know. And there are also on the spiritual aspect as well, Meera. So her love for own self-respect and love for God or whoever she believes, Shri Krishna, as her vision for the life support and companion and married to the supreme, to this beautiful prince from the childhood. And then though she was, because that was her determination and her self-respect, she was not afraid of the criticism of the society. She was not thinking that it's a royal family and my freedom can be snatched, can be taken away. And people still sing, oh God, give me that power of the same kind of love and trust for divine being as Meera had. And always actually when we look at the divinity of women, gentleness, spirituality, so it's emotional fitness, emotional development, spiritual development, health development, and also being independent and development. Then the more the skills are there in brain, there is no discrimination of men and women. It's the consciousness. And now we can see all women can do the same work as men are doing, but not with competition, but with self-respect. And with realization that I, the living energy, have the power within me of creativity, because it's the woman who becomes the part of for the development of the society as well. So father is father, but the mother is like the land. The seed cannot grow without the land. And so in the same way, she is the the source of the expansion of the society, but she is also the development, the power of development, and so at the same time balance with the spiritual development. And so this, not an ordinary woman, Nari, but as Lakshmi, not just an ordinary person, but an extraordinary inspiration for others. Leadership should has to be also there, but at the same time gentleness. So it's a balanced energy, is a real development which brings blessings and also which brings bliss in the family. Everything what we are doing with joy, with awareness of inner strength, and yet keeping the limit, I can do what easily I can do with joy, with happiness. And then there is always that divinity, the body is also becomes healthy, wealthy, mind becomes pure and powerful. And then a woman is not just an ordinary woman, she is Shakti. My sweet sisters, my friends, I would like to say that let us develop our own energy with wisdom, and that is it. We have the development of not only just the desires, wish of the mind of goodness, but also intellect has to be divine. Discrimination between right and wrong, things which are worrying me, creating fear, I don't have to let them stay in my mind and reduce my enthusiasm and energy. Now, so when you have this power of discrimination of right and wrong is there, you can keep only the what right is there, and right is right. It cannot be made wrong with the wrong of others or how other thinks. That's another aspect is this: when goddess divinity is there, there is the inner power within the self. And so we needed to develop that Shakti. That's why if all the negativity which reduces our happiness, our power, and puts us in the prison, keeps us in the prison of not developing our holistic energy, is when we forget who we are, when we forget our inner power. We don't have to fight. It's not a question of fighting. It's not a question of begging. It's a question of self-respect, of being Shakti. And first, it is when mind is powerful, then automatically the determination is there, then action is with royalty, with generosity, with divinity. And inner weaknesses of the self first are removed, or is actually hurt, is healed, or killed by the power of self-respect. So realization, this is why in Goddess's hand they have shown the spinning cycle of self-realization. There is a very powerful weapon of fire. It's a power which can burn all the obstacles. But at the same time, as there are these kind of weapons of sword and trident, on one side there are weapons, and they are the power of the internal power of the goddesses Durga, Shakti, Amba. And also on the other hand, there is a beautiful balance of lotus, detached, so that the inner power, the development helps, and this your energy blossoms. It is also, you yourself become a rose flower, a fragrant flower. So there might be some thorns around, but the beauty of the flower is not influenced or disturbed by the rose flower. And powerful, the sun flower, like focusing on the truth, on the light. So you are Shiv Shaktis. On one side is the power, other side is coolness, cool energy. But at the same time, soothing, powerful energy is balanced with fearlessness, with determination, with inner strength, tirelessness of the not getting afraid or tired by if other makes you some kind of criticism. No, have to check. And when I'm checking myself, I'm healer of my own self. And so the quality of this Shakti is conquering violence. No one can influence me, just the lion shown is there that you are a Shakti who conquer violence, internal violence, through the power of sweet silence, inner silence. All can be handled with the inner power, and that power does not then have any fear of what can I do, I am a woman. No, woman has the energy of the man, creates man. So this is why it's neither competition, nor any kind of criticism, nor any kind of fear, not jealousy, because the mother gives the love to the child. The children are children, and in this way, all our inner energies of peace, of love, of self-respect, of wisdom, of truth, of development, is that these are actually our children. And when we purity, peace, happiness, when we sustain them as they are my children, then I am world mother, because in the world these energy, these powers are needed. And so when wisdom is clear, intellect is divine, then automatically there is a power of to discriminate between right and wrong, decide what I have to do, and then after what actions are performed, there is no repentance, no fear, no question of wasting time, should not have had them happen this. And if something has gone wrong, not to worry, always life is learning. And so when I'm learning and I'm progressing, life is a school. Till the last breath, we will learning, but at the same time, an example, inspiration, power, sustenance, strength for the self, for the family, for society, for our country, and for the world, because the mothers are not only the mothers of the children, but are known as world mother. And then the nature is also called mother. Dharti Ma. Prakriti, nature is mother. Ganges are mother. Saraswati is mother. Physical mother is mother. So mother has that kind of development. So it is in development in the nature, motherly energy. So let there be that self-respect, so that we can holistic, natural, spiritual, society, self, family, and the world. Om Shanti.
बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश दीदी जी का, और बड़े ही सुंदर और सरल शब्दों में दीदी जी ने महिला के सर्वांगीण विकास के बारे में बताया. हमारे आज के कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर एक बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं, डॉक्टर सीमा राव. आप में से बहुत सारे लोग उनको ऐसे ही जानते होंगे. इंडियाज फर्स्ट वुमेन कमांडो ट्रेनर सीमा राव को अक्सर हम इंडियाज वंडर वुमेन के नाम से जानते हैं. भारत के वुमेन कमांडो ट्रेनर और भारत के स्पेशल फोर्सेस में उनके ट्रेनिंग का जो इतिहास रचा है उन्होंने, वो काबिले तारीफ है, जिनके लिए उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सन 2019 में भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा नवाजा गया. उनके बारे में ज्यादा कहने से ज्यादा मैं यही बेहतर समझूंगा कि मैं उन्हें बोलने का मौका दूं. आइए सुनते हैं डॉक्टर सीमा राव जी से.
हेलो, आई एम डॉक्टर सीमा राव. आई एम इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली वुमेन कमांडो ट्रेनर. टुडे आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट. The only difference between a man and woman is that a man is born out of a woman and a woman cannot be born out of a man. A woman has all the capabilities of a man and more. She has humility, adaptability and compassion. With these qualities imbibed into her, she can be an ideal partner to any man. In all the stages of her life, she has been to be made aware of her inherent abilities and capabilities. Let us talk of the different stages in a woman's life. As a girl child, I think it's very important for us to encourage the girl child into sports apart from studies. As a child, I was born to a freedom fighter. My father was a freedom fighter. And I was very impressed with his stories about his participation in the freedom struggle. I was weak, though I was very good in my studies. I got very good grades in school. But I always wanted to be strong. Around the age of 17 or 18, I met my future husband. And he was a doctor, but his hobby was martial art. So I realized that if I had to become strong, I had to learn how to fight. I had to learn martial art. So I started learning from him. I had trained for about 1.5 or 2 years when an incident happened on the beach. We used to go to the beach and we used to do our training every morning. One day while we were training, there were some 3 rat pickers who were passing by from there. They had a look at me and they passed some lewd, demeaning remarks about me. We ignored them because we did not want to stop our training. After training, when we were moving back and we were getting back home, at a distance we saw the 3 of them. My husband said that is your fight. I'm not going to be involved in this. And saying that, he moved out of there. I was extremely scared. I walked towards those men because that is the way in which I had to move towards going home. As I was passing by, one of them came and stood in front of me. I was looking down because I was very scared. So I moved left, he came left. I moved right, he came right. And slowly I lifted up my face and I looked at his face. And what I saw, I didn't like. I saw underestimation. You're just a woman. What can you do? I don't know what came over me, but I lifted my hand up and I slapped him across his face. In some time, his friend who was with him opened up a switchblade knife and slashed it across me. I moved out, thankfully for my reflexes, caught hold of his hand, punched him and threw him down on the ground. Soon there were people who gathered over there. But that was my first experience of strength. I realized that it was possible for one to move from weakness to strength. So therefore I think sports, activities like kushti, judo, boxing are very important for a girl because she feels confident and she knows that she can take care of herself as she grows up. As a teenager, what is woman empowerment? I think it's very important for a girl to complete her graduation. Another very interesting story of my life, Deepak is my husband, I and Deepak had gone to the beach one evening. It was a beautiful evening. The breeze was blowing, we could see the sunset. And we were standing at a height from the beach, the sand below, the height was about 15 feet. Deepak's wallet slipped out of sand and fell straight down. So he jumped down, he took his wallet, he was cleaning it, and suddenly he looked up at me and said, "Seema, come down, jump down, it's beautiful over here." It was a distance of 15 feet, so I looked down and I was very scared. I thought, if I jump, I will break my bones. Then I thought that if he can jump, why can't I jump? I just shut my mind to the fear and I jumped down. That jump changed my life because years later, when after I had trained the Air Force Commandos, I went in for a course and I completed my jumps and I proudly wear these wings across my chest. So, it's very important for you to take that first leap, that first jump, that first step is very important towards winning. I will now talk about as an adult, as a girl who now is an adult, it's very important to explore your aptitude. Different people have different aptitudes. You have to discover, you have to explore what is your aptitude, what you're good at, and go in that direction. I started training the forces with unarmed combat. Very soon I shifted, you know, I was very interested in shooting, so I joined the local sports club and I was quite good in shooting. So coming back, while we were once training the forces, we were, you know, training them in shooting and we were sitting on a firing range. And the session was over and we were sitting down at the table. It had a bowl of apples and some cold water, and I and Deepak were talking to each other. Out of the blue, he took an apple and placed it on his head and he said, "Shoot." I was obviously wondering what he's saying, so I asked him, "Are you joking?" He said, "No, I'm not joking. Pick up the weapon and shoot." I lifted the weapon up, steadied my shaking, trembling hands, looked through both the sides, and I pressed the trigger, and the apple just broke into pieces. So, what I want to say here is that exploring your aptitude is very important. Let me talk of woman empowerment as a working woman. It's very important for every woman to aim for the top slot. Don't be satisfied with what you are. Try, keep aiming, keep going higher and higher. When I started training the forces, it was only in unarmed combat. Later on, it became shooting. Then it became quick response teams, team-on-team tactics. And finally, it became close quarter battle. So improvising is important. Going higher up, you know, making your skills better and better is very important. Don't be satisfied and stay at the same stage. If you're interested in marriage and you intend to get married, it is very important to check your partner before marriage. Look for qualities of spendthriftness, anger spells, excessive demands. It's very important because marriage is a very big step in a woman's life. So until and unless you know how your partner is, you must think before you go ahead with that step. In my case, my husband was interested, you know, he was then, we were seeing each other, and he decided to come to speak to my father. He proposed marriage, and that's the way it went. In marriage, I think it's very important to say no to dowry. When I got married, I didn't ask for any money. We were not given any money. I moved into a chawl because my husband's family is a poor family. The chawl had a common toilet. But, you know, over the period of years, we started our own academy. And today, I own a plush penthouse in Mumbai. As a wife, it's very important to demand to work. In the beginning, when my husband and I would do, you know, assignments for the forces, it would be together. But then there was this one course, which is a joint training course between two different forces. And I told it that I'd like to go and do this on my own. So that was also important that you go in, you know, you have your own things to do. During the course of the past 25 years, I had many injuries, one of which was a back injury. I was doing what is called as a monkey rope between two buildings at a height of about 40 feet. For some reason, the rope snapped and down I came. Thankfully, I was holding the rope tightly with both my hands. But my back, I heard a snap in my back. There was a crack, my vertebrae had cracked. I was taken to safety. I would lie down on the hospital bed and I would think, do I want to go ahead with this journey? There was another incident where I had a head injury. Again, during that time, I was hospitalized for another 3 months. And I would ask myself, do I want to go ahead with this journey? My husband was very supportive. I would cry on his shoulder in frustration. And I would say, why is it so difficult? And he would boost my morale. As a daughter-in-law, I think it's very important to win over your mother-in-law. When I got married, I was very interested in physical activities like scuba diving, you know, mountaineering, etc. And I would keep going out for these courses. My mother-in-law's ideology was different. She thought a woman's place is in the house, in the home, with the family, taking care of the kids, the in-laws. In a way, what she thought was correct. But my ideology was a little different. My husband was supportive. So I would keep going out, do courses and come back. There were quarrels in the house. And one day, she said, enough is enough. Please leave the house, both of you, and go and live in your own house. So we both decided to leave and went and lived in Pune. Of course, years later, we patched up and we started living under the same roof. I still remember my mother-in-law, she had heart disease and she was ailing and she had heart failure. There was this very important assignment that had come up and there was a decision to be taken on who should go for it, whether Deepak should go or I should go. I told my husband to go ahead with that important assignment and I stayed back to take care of my mother-in-law. My mother-in-law died on my lap. And a few days before, she once told me that if there is another life, I would like you to be born as my daughter. I think I will never forget these words that she said. My mother-in-law was surely my friend more than being a mother-in-law to me. As a mother, woman empowerment is about showing your daughter a world beyond the home. Don't confine her to the home. Let her go out and let her find her place in this big world. As a mother-in-law, I think it's very important to understand your daughter-in-law. When the daughter-in-law comes into a house, gets married and comes into your house, it's obviously going to be a lot of wariness and apprehension that she has. She's entering a new house, new family members. How are they going to respond to her? So as a mother-in-law, befriend your daughter-in-law. Make her feel at ease. And it's going to be a wonderful relationship between the two of you. As a homemaker, I think it's very important to balance your home with your work, with your relating, with your family, husband, etc. When it comes to me, I cook, I take care of the home, I spend quality time with my family, I spar, I do training with my husband. All of it is part of my life. As a grandmother, I think woman empowerment is about teaching your grandkids about gender equality. Children look up to their old grandmother. And if the grandmother teaches them about gender equality, it will be the ideal thing for the future. As a senior citizen, I think it's very important for you to secure your assets and your property. Keep it secured with yourself so that you can take care of yourself. In society, it's very important to motivate other women. Women understand each other, their joys, their sorrows, their problems. It's very easy for one woman to to relate to another. It's very easy for one woman to empower another. In my experience, whichever woman has come across my path, if I could empower her, help her in some way, I have done that. And in this society, if all of us women decide to do that, then it's going to be, actually the future is going to belong to women. So finally, I also believe that in society, important to motivate other women. And to end it all, to sum it all, let me say that as a woman, understand that you are as capable as a man. That you have those latent, pre-existent capabilities within you. And you, all you have to do is unleash them out into the open. And when you do that, the world is yours. Approach your life with cautious boldness. By this I mean, be bold, but have a little bit of caution within you. That caution is what keeps you safe and yet winning. If you meet an obstacle, understand that life is full of obstacles for all of us. And nothing new is happening if you face an obstacle. But remember, life is once. If you meet an obstacle, go through it, go around it, go above it, but reach your goal. And finally, remember, there is no limit. The sky is the limit. You have one life. Go out there, unleash your capabilities. Don't be afraid of obstacles and reach your goal. Keep happy, keep winning.
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सीमा जी का. उन्होंने अपने अनुभवों से हमें प्रेरित किया. उनके जीवन की गाथा तो प्रेरणादायी है ही, मगर उन्होंने शब्दों में भी हम सबको अपने जीवन में मोटिवेटेड रहने के बारे में बताया. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आमंत्रित करना चाहता हूं ब्रह्मा कुमारी सुधा दीदी जी को. ब्रह्मा कुमारी सुधा दीदी जी ब्रह्मा कुमारी के मॉस्को रशिया के सेवा केंद्रों की निदेशिका हैं. अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत एक अल्प आयु में करते हुए भारत ही नहीं मगर विदेशों तक इस ईश्वरीय ज्ञान को पहुंचाने में वो सतत प्रयास करती रही हैं. भारत के बाहर जाकर रशियन भाषा को सीखकर वहां के लोगों में आध्यात्मिकता की अलख जगाने के इनके अनूठे प्रयास को हर कोई सराहता है. पिछले 30 वर्षों से भी अधिक समय तक रशिया में सकारात्मक परिवर्तन लाने और आध्यात्मिकता के उनकी शिक्षाओं को देखते हुए रशिया की सरकार ने भी उन्हें कई अवार्ड से नवाजा है. आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सुधा दीदी जी से.
ओम शांति. महिलाओं का सर्वांगीण विकास, इस विषय पर चर्चा करते हुए आज हम इसके 3 पहलुओं पर बात करेंगे. पहली बात, सर्वांगीण विकास की क्या आवश्यकता है. दूसरा, सर्वांगीण विकास का अर्थ क्या है. और तीसरा, अपने सर्वांगीण विकास के लिए हमें क्या करना है. यदि मानव जीवन की तुलना किसी वृक्ष से की जाए तो बहुत ही सहज स्पष्ट समझ में आ जाता है कि सर्वांगीण विकास का क्या महत्व है. हम सब अपने अनुभव के आधार पर जानते हैं कि कोई भी वृक्ष तभी सुंदर लगता है जब वो सब ओर से और सामान्य रूप से फैला हुआ हो, हरा भरा हो. और यदि किसी वृक्ष की शाखाएं एक ही तरफ झुकी हुई हों, बेशक हरी भरी हों, लेकिन एक ही तरफ झुकी हुई हों, तो वह वृक्ष न केवल देखने में आकर्षक नहीं लगता परंतु हवा के झोंकों, आंधी और तूफान से वो सहज ही गिर सकता है. मानव जीवन भी कुछ इसी प्रकार का है. हमें जीवन मिला है खुशी से जीने के लिए और खुशी बांटने के लिए. मानव जीवन का यही उद्देश्य है. लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन के केवल एक या दो पहलुओं पर ही ध्यान देता है, उसमें स्वयं को विकसित करता है, परंतु अन्य पहलुओं को वो निग्लेक्ट कर देता है, उनके प्रति वो लापरवाह हो जाता है, तो उसका जीवन कुछ अधूरा सा रह जाता है। वो अपने लक्ष्य को, खुशी से जीवन जीने को और खुशी बांटने को प्राप्त नहीं कर पाता। उदाहरण के तौर पर हम जानते हैं कि धन का जीवन में बहुत महत्व है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपना सारा ही समय और सारी शक्तियां केवल धन उपार्जन में ही लगा दे, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य, अपनी जिम्मेवारियों का कोई ध्यान न दे, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन निश्चित ही आनंदमय नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित करे, हाँ स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी पूंजी है, लेकिन यदि व्यक्ति अपने शरीर को ही हृष्ट पुष्ट बनाने में लगा रहे और अपने जीवन में गुणों का, मानवीय मूल्यों का धारणा ना करे, उसका पुरुषार्थ ना करे, तो वो व्यक्ति भी सर्व का प्रिय कदापि नहीं बन सकता और उसके जीवन में भी हर्ष स्थान ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को हर दिशा में, सभी दिशाओं में संतुलित रूप से विकसित करता है, तो उसका एक व्यक्तित्व, संतुलित व्यक्तित्व उभर कर आता है, जिसको हम हार्मोनियस पर्सनालिटी कहते हैं। वास्तव में ऐसे व्यक्तित्व की ही शोभा है, प्रतिष्ठा है, मूल्य है। ऐसा व्यक्तित्व स्वयं के लिए और अन्य के लिए, पूरे समाज के लिए एक अनमोल निधि है, एक अनमोल उपहार है, एक अनमोल सौगात है। अतः समाज के हर प्राणी का ये लक्ष्य होना चाहिए कि वो अपना सर्वांगीण विकास करने का पूरा पूरा प्रयास करे, पूरा पूरा पुरुषार्थ करे। इसी में ही उसका स्वयं का और समाज का कल्याण है। हाँ, ये बात बहुत जरूरी है, सर्वांगीण विकास पुरुष हो या महिला हो, हर व्यक्ति को करना है, परंतु महिलाओं के सर्वांगीण विकास में परिवार का और समाज का सर्वांगीण विकास समाया हुआ है। हम जानते हैं महिला परिवार की धुरी है, इसलिए ये सम्मेलन और आज का ये विषय महिलाओं को समर्पित है। अब हम इस बात पर आते हैं कि सर्वांगीण विकास कहाँ किसको जाता है। मानव जीवन के पांच मुख्य पहलू हैं: शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। इन पांचों ही पहलुओं में विकास, जीवन जीते हुए, उसे सर्वांगीण विकास कहा जाता है। अब हम एक एक पहलू के बारे में कुछ संक्षेप में विचार करेंगे। पहला, जीवन का पहला पहलू है शारीरिक। ये जो शरीर है, ये हमें आत्मा को एक बहुत सुंदर अनमोल साधन के रूप में मिला हुआ है। इसी साधन के द्वारा आत्मा खुद को व्यक्त करती है, बहुत कुछ सीखती है इसी शरीर के द्वारा, बहुत अनुभव करती है, इसी शरीर के द्वारा ही कर्म करके अपने मंजिल की ओर अग्रसर होती है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। इसलिए शारीरिक पहलू पर ध्यान देना अनिवार्य हो जाता है। शारीरिक पहलू पर ध्यान देने का, अर्थात इसे विकसित करने का अर्थ ये है कि हम इसकी आंतरिक और बाहरी स्वच्छता और स्वास्थ्य पर पूरा पूरा ध्यान दें, क्योंकि जहां स्वच्छता है, जहां स्वास्थ्य है, वहां सुंदरता है। अतः शरीर की जो भी आवश्यकताएं हैं, भोजन, जल, निद्रा, व्यायाम इत्यादि इत्यादि, हम सब अपने शरीर को संतुलित मात्रा में और एक श्रेष्ठ मात्रा में प्रदान करें, जिससे हमारा शरीर हमारे जीवन के अंत तक हमारा सहयोग दे, हमें मदद करे, हमें मंजिल की ओर पहुंचाने में हमारा भागीदार बने, न कि हमारा विघ्न बन जाए। तो इस प्रकार ये जीवन का पहला पहलू है शारीरिक, जिस पर हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है। दूसरा है मानसिक पहलू। हमारे सोचने की शक्ति का नाम मन है। हम सबको ये अनुभव है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो भी विचार करते हैं, उसका प्रभाव हमारे सारे ही जीवन पर पड़ता है। हमारी फीलिंग्स पर, हमारे इमोशंस पर, व्यवहार पर, पूरे वातावरण पर, हमारे शरीर पर, संबंधों पर, सब पर हमारे विचारों का प्रभाव पड़ता है। और विचार कई प्रकार के होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, श्रेष्ठ भी होते हैं, निकृष्ट भी होते हैं, कंस्ट्रक्टिव भी होते हैं, डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो जैसे हमारे विचार होंगे वैसा हमारा जीवन बन जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। तो इसलिए बहुत बहुत जरूरी है कि हम श्रेष्ठ विचार करें, हम कंस्ट्रक्टिव विचार करें, चाहे परिस्थितियां किसी भी प्रकार की हों। तो मानसिक पहलू का विकास, उसका क्या अर्थ है? हमें अपने मन को बहुत प्यार से, स्नेह से समझाना है, सिखाना है। मन को ऐसी शिक्षा देनी है, ऐसा प्रशिक्षण देना है कि हमारा मन शक्तिशाली हो जाए। और फिर जो भी परिस्थितियां, चाहे तन की, चाहे धन की, जन की या प्रकृति की ओर से कोई भी परिस्थितियां आए, उसमें हमारा मन हलचल में ना आए, अशांत ना हो, घबराए नहीं, भयभीत ना हो, हिम्मत, आशा और विश्वास बनाए रखे। जब हम अपने मन को इस प्रकार प्रशिक्षण देते हैं, तो ऐसा मन समस्या पर फोकस्ड होने के बजाय समाधान पर फोकस्ड हो जाता है और वो हल को ढूंढ पाता है। और हल को ढूंढ पाने के कारण उसका जीवन बहुत खुश और शांतमय होता है। आजकल तो दुनिया में इसके लिए बहुत प्रकार के कोर्सेज दिए जाते हैं। हमारे विद्यालय में भी ये कोर्सेज दिए जाते हैं, जैसे पॉजिटिव थिंकिंग कोर्स, एंगर मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कई प्रकार के कोर्सेज हैं जो हमें हमारे मन की शक्ति को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। आप इन कोर्सेज का लाभ ले सकते हैं। लेकिन इन कोर्सेज के अलावा मैं रेगुलर बेसिस पर अभ्यास करने के लिए आपको एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज बताती हूँ। वो ये है कि आप अपने दिनचर्या का प्रारंभ और दिनचर्या का अंत बहुत अच्छी मानसिक स्थिति और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ करें। जैसे ही आपकी आंखें खुलती हैं, आप अपने आंतरिक चक्षु से उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को देखें, उनका दिल से धन्यवाद करें और कहें, मेरे पिता परमात्मा, आज के इस नए दिवस के लिए आपका धन्यवाद। आपके इस धन्यवाद कहने से ही आप परमात्मा की ब्लेसिंग के, परमात्मा की मदद के, परमात्मा की दुआ के अधिकारी बन जाते हैं। ऐसे ही जब दिनचर्या का अंत करें, तो सोने से पहले फिर से एक बार अपने आंतरिक चक्षु से परमात्मा की ओर देखें और परमात्मा का धन्यवाद करें, अपने दिन का समाचार बताएं और ये बताएं कि मेरा दिन अच्छा बीता, धन्यवाद, और ऐसी स्थिति में ही सो जाएं। इस अभ्यास का परिणाम ये होगा कि धीरे 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 आपका मन शक्तिशाली होता जाएगा और परिस्थितियों के प्रभाव में नहीं आएगा। क्योंकि मन शक्तिशाली हो जाएगा, स्वस्थिति शक्तिशाली होगी, तो वो परिस्थितियों को प्रभावित कर पाएगी। तो इसलिए हमारे मानसिक पहलू के विकास की भी बहुत आवश्यकता है। तीसरा पहलू है बौद्धिक विकास, बौद्धिक पहलू। बुद्धि का विकास ज्ञान के द्वारा होता है, लेकिन किताबी ज्ञान नहीं, जो शिक्षा हमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में मिलती है, उससे हमारे मस्तिष्क का तो विकास होता है, परंतु बुद्धि का विकास नहीं होता। बुद्धि अर्थात विवेक, विजडम। बुद्धि के विकास का अर्थ है सत्य असत्य, सही और गलत, अच्छा और बुरा, उसको समझने, परखने और सही निर्णय लेने की शक्ति का विकास। यह विकास किताबी ज्ञान से नहीं होता। इस विकास के केवल दो ही साधन हैं। एक है जीवन के अनुभव से जो हम शिक्षा ले लेते हैं, अपने जीवन के लिए कोई निष्कर्ष निकाल लेते हैं, वो हमारे बुद्धि के विकास में, सत्य असत्य की पहचान में, सही निर्णय करने में बहुत मदद करता है। हमारे इतिहास में बहुत से ऐसे महापुरुष, महान महिलाएं हुई हैं जिनकी जीवन कहानी, जिनका जीवन अनेक प्रेरणाओं से भरा हुआ है। अगर हम उन जीवन कहानियों को सुनते या पढ़ते हैं और उनसे कुछ सीख लेते हैं तो हमारी बुद्धि विकसित होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही हमारे जीवन काल में भी जरूर ऐसे कुछ व्यक्ति हुए हैं जिनके जीवन के अनुभव से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और न केवल अन्य के जीवन से परंतु अपने जीवन से भी हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हाँ, हमने अपने जीवन में कुछ भूलें की हैं, कुछ गलतियां की हैं, कुछ अच्छे कर्म भी किए हैं। हम अपनी गलतियों से भी सबक ले सकते हैं और अपने अच्छे कर्मों से भी सबक ले सकते हैं। सिर्फ लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे श्रेष्ठ कर्म करने हैं, और उस जीवन के लक्ष्य को खुशी से जीना और औरों को खुशी देना, उसे प्राप्त करना है। हम केवल ये नहीं सोचते कि मेरे लिए क्या अच्छा है, नहीं, सबके लिए क्या अच्छा है। तो एक तरीका अपने बुद्धि के विकास का है औरों के अनुभव से और अपने जीवन के अनुभव से अपनी बुद्धि को विकसित करना, ताकि हम चाहे कितने भी प्रोवोकेशंस हो, कितने भी टेम्पटेशंस हो, परंतु हम एक सन मार्ग पर चलते रहें, हमें कोई भी कुमार्ग की ओर न चला सके। और दूसरी बात, परमात्मा को कहा जाता है सद्बुद्धि का दाता। वो बुद्धिमानों का बुद्धिमान है, वो सत्य है। जब हम उस सत्य परमात्मा से, उस सद्बुद्धि दाता से अपने मन को जोड़ लेते हैं तो हमारे जीवन में सत्य का प्रकाश हो जाता है, हमारी बुद्धि प्रकाशित हो जाती है, हमें दिव्य बुद्धि मिल जाती है, और इस दिव्य बुद्धि के आधार पर हम सदा ही सत्य मार्ग की ओर आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं और कई अन्य लोगों को भी अपने मंजिल तक पहुंचाने में मददगार बन सकते हैं। यह है तीसरा पहलू जीवन का, बुद्धि का विकास। चौथा पहलू, चौथा है सामाजिक पहलू। सामाजिक पहलू में विकास का अर्थ ये है कि हम अपने को सदा के लिए एक दृढ़ संकल्प दे दें कि मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है। हम जब से जन्म लेते हैं तब से लेकर हम समाज से बहुत कुछ लेते हैं, तो हमें अपने मन में ये भावना पैदा कर देनी चाहिए, विकसित कर देनी चाहिए कि हमें समाज के लिए अवश्य ही निस्वार्थ रूप से कुछ करना है, कुछ देना है। स्वार्थ भाव से ऊपर उठकर सेवा भाव को विकसित करना और समाज के उत्थान में सहयोगी बनना हर मानव का कर्तव्य है। ऐसा मानव जो अपने को ही नहीं केवल दूसरों के बारे में भी सोचता है, वो केवल अपनी सुविधा का ध्यान नहीं देता, वो अन्य की सुविधाओं का भी ध्यान देता है, चाहे वो अन्य अपने परिवार के सदस्य हों, पड़ोसी हों, ट्रेन या बस में जाने वाले हमारे सहयात्री हों, या सड़क पर चलने वाले गाड़ी के दूसरे ड्राइवर्स हों, या दुकान में कोई ग्राहक हो, कोई भी हो, हम कहां भी हों, हम न केवल अपनी सुविधा का पर अन्य की सुविधाओं का भी ख्याल रखें, न केवल अपने अधिकारों का परंतु अपनी जिम्मेवारियों और अपने कर्तव्यों का भी हमें बोध हो। इसको ही कहा जाता है हम अपना सामाजिक पहलू में विकास कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का एक मोटो जीवन का होता है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी हों, सर्वे संतु निरामया, सब स्वस्थ हों और मुझसे कभी किसी को दुख न मिले। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन गुणों से संपन्न होता है, वो गुणों की धारणा में मानवीय मूल्यों की धारणा पर पूरा पूरा ध्यान देता है, जैसे सम्मान, नम्रता, धीरज, प्रेम, सहयोग, करुणा आदि आदि। और इसलिए ऐसा व्यक्ति सर्व का प्रिय, प्रभु प्रिय और स्वयं का प्रिय बन जाता है और बहुतों की दुआओं का पात्र बन जाता है, उसका जीवन खुशियों से संपन्न हो जाता है। पांचवा है आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास का अर्थ है आत्मा का विकास। आत्मा ही शरीर को चलाती है, शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर मुर्दा हो जाता है। तो आध्यात्मिक विकास का अर्थ है आत्मा का अर्थात स्वयं का विकास। और आत्मा का अर्थात स्वयं के विकास का अर्थ ये है कि हम आत्मा को पुनः उसकी अनादि पूर्ण पवित्र स्थिति की चरम सीमा तक ले जाएं। आप सोचेंगे इसका क्या अर्थ है। हमें ये समझने की जरूरत है कि आत्मा अपने अनादि स्वरूप में पूर्ण पवित्र है। वो खजाने जो आज का मानव ढूंढ रहा है वो आत्मा के अपने पर्सनल खजाने हैं, शांति, प्रेम, शक्ति, सत्यता, आनंद, ये आत्मा के अपने ही गुण हैं। लेकिन क्योंकि हम स्वयं को भूल गए, हम अपने को आत्मा समझना भूल गए, तो हम ये गुण भी खो बैठे। आत्मिक विकास का अर्थ है हम स्वयं को जाने अर्थात आत्मा को जाने, पहचाने और आत्म स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करें। उसके साथ साथ हम आत्मा के पिता परमात्मा को जाने और परमात्मा को पहचाने। और तीसरा, आत्मा अपना नाता, सच्चा नाता, सिर्फ कहने मात्र नहीं, सच्चा नाता उस सत्य पिता, उस सत्य परमात्मा के साथ जोड़े। और क्योंकि परमात्मा पतित पावन है, सर्वशक्तिवान है, सर्व गुणों का भंडार है, तो आत्मा का जब नाता परमात्मा से जुड़ता है तो आत्मा उससे पवित्रता की शक्ति को प्राप्त करती है, अपवित्रता उसके जीवन से धुल जाती है, विकार समाप्त होने लगते हैं, बुराइयां खत्म हो जाती हैं। और आध्यात्मिकता इस बात को स्पष्ट करती है कि जीवन के सभी दुखों, अशांति और समस्याओं का मूल कारण अपवित्रता ही है। तो जब अपवित्रता खत्म होती है तो सब प्रकार के दुख और अशांति से आत्मा मुक्ति प्राप्त कर लेती है। तो ये है जीवन के पांच पहलू। इन पांचों ही पहलुओं में सभी को, पुरुष हो या महिलाएं हो, सभी को अपना विकास करना है, सभी को विकसित होना है, तभी समाज का कल्याण हो सकता है। लेकिन यदि महिलाएं इस पान का बीड़ा उठा लें और सभी पुरुष वर्ग के लोग, पिता, पुत्र, भाई जो भी हैं, वो इसमें सहयोग दें, तो समाज का कल्याण दूर नहीं। हमारा भारत फिर से वही स्वर्ग बन सकता है जिसमें सर्वांगीण रूप से विकसित देवी देवताओं का ही राज्य था। तो इतना कहकर मैं अपने वक्तव्य को यहाँ पर समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसको सुना और बहुत आशा करती हूँ कि आप इन पांचों ही पहलुओं पर फिर से ध्यान देंगे, फिर से दोहराएंगे और अपने को पांचों ही पहलुओं में विकसित करने का पूर्ण पुरुषार्थ करेंगे। धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद सुधा दीदी जी का, उन्होंने हमें अपनी प्रेरणाओं से भरा। आध्यात्म के जगत में महिलाओं के योगदान के बारे में, महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए आध्यात्म कितना महत्वपूर्ण है, यह भी हमें समझने को मिला। अब अगली प्रस्तुति एक बहुत ही सुंदर गीत है। डॉक्टर दामिनी मेहता हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हैं और एक बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत करने वाले हैं। नारी की विशेषताओं के बारे में इस गीत ने बहुत ही सुंदर वर्णन दिया है। नारी को अक्सर गलत ही सही मगर हम कहते हैं अबला है, मगर आज सही पहचान है कि नारी में जो शक्ति है वो शायद अगर हम पहचान लें तो फिर नारी को इस संसार के परिवर्तन का, इस समाज के परिवर्तन के की के रूप में हम देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दामिनी जी का, जो इतना सुंदर गीत हमारे सामने प्रस्तुत किया। अब मैं आपको ले चलता हूं हमारे मुख्य अतिथि के अभिभाषण की तरफ। इस सेशन के चीफ गेस्ट के रूप में हमारे साथ मिस कल्याणी शरण जी हैं। कल्याणी जी चेयरपर्सन हैं स्टेट वुमेन कमीशन झारखंड के। इनके बारे में मैं ज्यादा कुछ आपके सामने प्रस्तुत करूं, इससे बेहतर यही होगा कि उनके भाषण को हम सुने और उनसे प्रेरणाएं लें। कल्याणी शरण जी।
ओम शांति। आज महिलाओं को सर्वांगीण विकास के लिए मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज महिलाएं 21वीं सदी में किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और देखा जाए तो पहले ज्यादा लोग पढ़ लिख कर भी घर में बैठकर अपने टैलेंट का उतना उपयोग नहीं कर पाते थे, आज घर की महिलाएं बाहर निकलकर घर से लेकर समाज को, अपने राज्य को, पूरे देश को लाभान्वित कर रहे हैं। क्योंकि अभी आप देख लीजिए कि हाल ही में एक दो रोज पहले क्लास 10 और प्लस 2 का जो एग्जाम आया उसमें आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे बढ़ चढ़कर अगर किसी ने अच्छी संख्या में उत्तीर्ण हुए तो हमारी बच्चियां हैं। तो इसका कारण है कि आज की घर के परिवार माता पिता भी जान रहे हैं कि अगर मैं अपनी बच्चियों को छूट ना दूं तो ज्ञान की शिक्षा प्राप्त नहीं होगी। और आज के युग में ज्ञान और विज्ञान दोनों जरूरी है। आज देश की पूरी बेटियां, चाहे वो बहन हो, बहू हो, माँ हो, हर रूप में मातृ सशक्तिकरण के रूप में, महिलाएं देवी शक्ति के रूप में आगे बढ़ रही हैं। हर जगह महिलाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि अपने बच्चों को पालना, घर परिवार को पालना, समाज को देखना और अपने टैलेंट का उपयोग किस तरह से किया जाता है वो पुरुषों से हर तरह से आगे दिखाई दे रही है। पहले देखा जाता था कि लोग घूंघट के तर पर रहकर अपनी टैलेंट के उजागर नहीं कर पाते थे, अब वो बात नहीं है। आज के युग में हर घर की महिलाएं पढ़ लिख कर अगर वो घर में है तो घर से ही अपना काम कर रही हैं। आप देख लीजिए हमारी महिलाएं भले ही पढ़ी लिखी भी अगर गांव की नहीं है तो लोग बेवकूफ भी नहीं है। देश में प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, आप गांव की महिलाओं को आप ले लीजिए कि वहां की महिलाएं जानती हैं कि स्वयं सहायता समूह के तहत अगर हम एक ग्रुप बना लेते हैं तो घर से ही अपना हम रोजगार शुरू कर सकते हैं। जैसे कि 4 लाख का लोन मिल गया, उस लोन से पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन करती हैं। और ये भी नहीं कि आप बाजार में बैठकर सुबह से लेकर शाम तक आप बेच रही हो, ऐसी भी बात नहीं है। मैंने आपने आयोग के तहत से देखी, मैं श्रीमती कल्याणी शरण राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के नाते हर गांव में जाकर मैं गांव की महिलाओं के साथ में मैंने जो काम देखा कि हर महिलाएं आजकल अपने आप को अपने सुरक्षित रहते हुए और आगे बढ़ने का और रोजगार से जुड़ने का जो काम कर रहे हैं वो जितना भी इसका बढ़ाई किया जाए वो कम होगा। दूसरी बात कि लोग थोक भाव से मुर्गी पालन कर लेता है लोग और बगल के कस्तूरबा स्कूल में दे देते हैं, मछली पालन करता है लोग थोक भाव से मछली बेच रही है, इसी तरह से लाख की चूड़ियां बना रही है। घर में हमारी महिलाएं सारे काम को निपटारा करके घर परिवार को देखते हुए अगर पढ़ी लिखी हैं तो अकाउंटिंग का काम कर रही हैं, जैसे कि कुकिंग का काम कर रही हैं और समाज में एक अपना एक अच्छा संदेश भेज रही हैं। तो इससे दिखाई देता है कि आज के युग में महिलाएं कितना सर्वांगीण बन रही हैं। तो अपने आप को, अपनी टैलेंट को उजागर करने के लिए आज के युग में महिलाओं को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। महिलाएं खुद समझदार हैं और अपने आप आगे बढ़ने के लिए, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को बढ़ाने के लिए परिवार से ही आगे निकल रही हैं। आप जानते हैं कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है। आज चाहे वो देख लीजिए अपने हर तरफ देखिए कि महिलाओं का कार्य, महिलाएं जो है देश के राष्ट्रपति अगर है तो महिला थी, देश के लोकसभा की अध्यक्ष भी महिला थी, देश के प्रधानमंत्री महिला थी और हर राज्य में गवर्नर महिला है, कई राज्यों में मुख्यमंत्री महिला है, खेल जगत में महिला है, फिल्म जगत में महिला है, संगीत जगत में महिला है। तो इसी तरह से हर सचिवालय में देखिए, डॉक्टर देखिए, इंजीनियर देखिए, टीचर देखिए, प्रोफेसर देखिए, हमें आज महिलाओं को बताने की आवश्यकता है। अगर वो अपने गुण, अपनी शिक्षा शिक्षा अगर अच्छी तरह से वो शिक्षित हैं, तो अपने आप को टैलेंट है कि हम किस तरह से अपने आप को मनोबल बढ़ाते हुए बोल्ड बनते हुए और समाज की सेवा में लगे रहें और हर तरह से जहाँ भी उनको लगाया जाए वहाँ हम काम करने के लिए सक्षम हैं। आप प्रशासन में देख लीजिए, जहाँ भी आप देखिए महिलाओं के बिना पुरुष अधूरा है। और कहा ही जाता है कि महिला और पुरुष एक गाड़ी के दो पहिए हैं। मैं ये भी कहती हूँ कि हर महिलाओं को जब तक परिवार का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक महिलाएं आगे भी नहीं बढ़ सकती हैं। तो महिलाओं को बढ़ाने के लिए, बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए हमें परिवार की आवश्यकता पड़ती है और कहीं न कहीं इसमें माता पिता और गुरुजन का सेवा हमें अथाह पूर्वक जब मिलेगा तो निश्चित है कि आज के युग में महिलाएं जरूर अपने आप में काबिलता दिखाएंगी और आगे बढ़ेंगी। हम महिलाओं को अपने आप में अपने टैलेंट का भरोसा रहता है, क्योंकि हम ही दुर्गा हैं, हम ही मातृशक्ति के रूप में लक्ष्मी हैं, हम ही सरस्वती हैं। और देखते हैं कि देव कुल से आके और आज तक अगर किसी का नाम लिया जाता है तो आप देख लीजिए राधे श्याम, सीताराम, गौरी पार्वती, लक्ष्मी नारायण के रूप में महिलाओं को देवी स्वरूप पूजा जाता है। तो मुझे कहीं से नहीं लगता कि जिस तरह से मैंने दो दो बार माउंट आबू ऐसा जगह में जाके मैं देखी कि वहाँ की हमारी बहनें पुरुषों से आगे हैं। हर जगह पर महिलाएं फिट हैं। जहाँ भी काम मैंने देखा तो देखा कि महिला हमारी दीदी लोग सुबह का चाहे वो मुरली क्लास हो, योगा का क्लास हो, किचन का काम हो, हर तरह इतनी भारी संख्या में जहाँ लाखों लाख लोगों को बताया नहीं जा सकता कि एक परिवार में लोग रहते हैं तो चार या छह या दस लोग, वहाँ पर सोचना पड़ता है कि मुझे खाना बनाना है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे बच्चों को देखना है। लेकिन वहाँ तो मैं पांच दिन मुख्य अतिथि के रूप में रही, लेकिन पांचवा दिन मुझको ऐसा लगा कि काश यहाँ ही हम आके बस जाते। तो जहाँ पर इस तरह से माउंट आबू जगह में महिलाओं को इस तरह से शिक्षा दी जाती है तो ऐसे शिक्षा प्राप्त करके वहाँ की हमारी बच्चियाँ निकलती हैं, हमारी महिलाएं पूरे देश में अपना सेल्टर होम चला रही हैं। इस तरीका से हर जगह पर हर अभी मैं नेदरहाट गई थी, नेदरहाट में भी हमने देखा कि वहाँ भी एक दिन मैं चीफ गेस्ट थी, वहाँ भी माउंट आबू का क्लास चल रहा था। तो माउंट आबू माना जाता है कि प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय आबू में सभी देश से प्रथम माना जाता है। और शिक्षा जिसे शिक्षा प्राप्त हो जाएगी वहाँ मुझे कहीं दिखाई नहीं देता कि अशिक्षा वहाँ पर प्राप्त हो। इसलिए आज के युग में शिक्षा बहुत जरूरी है और शिक्षा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और जब हम शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे तो शिक्षा के थ्रू हमें माउंट आबू ऐसा जगह में हमें संस्कार जैसे वहाँ लोगों को मिलता है हर देश में, मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास से कहना चाहती हूँ कि आज की महिलाएं बहुत सक्षम सर्वांगी बन रही है और आगे भी इसी विश्वास को लेकर अपने देश में एक सफलतापूर्ण नारी शक्ति के रूप में आप मानी जाएंगी। और दूसरा चीज रोजगार है, तो हमारे देश में कौशल विकास योजना के तहत महिलाओं को रोजगार भी दिया जा रहा है। इसी तरह से कई भाग में मैंने देखा कि पढ़ लिखकर महिलाएं आज घर में चाहे गांव हो, शहर हो, देहात हो, कोई भी बैठना नहीं चाहता, क्योंकि ये जरूरी है कि हम अपने आप में सक्षम हो और हमारा मनोबल ऊंचा रहे और एक महिला नारी सशक्ति के रूप में स्वयं सहायता समूह के रूप में हम आगे बढ़े और इसी तरह से अपने समाज को, अपने राज्य को और अपने देश को लाभान्वित करें। ओम शांति। धन्यवाद।
माननीय कल्याणी शरण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सेशन में वो हमारे मुख्य अतिथि बनकर आए और उन्होंने हम सबको प्रेरित किया, मोटिवेशन के शब्द कहे और साथ साथ एक मार्गदर्शन भी दिया कि ये जो बदलाव के बारे में, ये जो महिला के सर्वांगीण विकास के बारे में हम सोचते हैं, उसके प्रेरक बिंदु क्या हैं। दोबारा उनका तहे दिल से धन्यवाद। अब मैं आपको ले चलता हूं ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू की तरफ। हमारे अगले वक्ता डॉक्टर सविता जी हैं। पेशे से एक मेडिकल डॉक्टर हैं और वो ब्रह्मा कुमारीज के राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के विमेन्स विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। एक तरफ से कहा जाए तो ये जो कॉन्फ्रेंस हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें वो मेजबान की भूमिका निभा रही हैं। आइए उनसे सुनते हैं इस कॉन्फ्रेंस के प्रति उनके शुभ विचार।
ओम शांति। महिला ई कॉन्फ्रेंस के इस सत्र का विषय है महिलाओं का सर्वांगीण विकास। आज हम देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एज है, भौतिक विकास अपने चरम पर है और भौतिक विकास में हम अपने जीवन में सभी भौतिक सुख सुविधाओं का संचय करना चाहते हैं। महिलाएं भी इस भौतिक विकास के साथ ही चल रही हैं, चाहते हैं हमारा अच्छा घर हो, घर में सब साधन हो, जमीन जायदाद हो, बैंक बैलेंस हो, और इसके कारण आज मनुष्य की भागदौड़ की जिंदगी है और इस भागदौड़ की जिंदगी ने उसे तनाव दिया है, चिंताएं और भय दिया है और उसका असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। अगर शारीरिक स्वास्थ्य की हम बात करते हैं तो महिलाएं अगर स्वस्थ रहती हैं तो वो अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की भी बेहतर देखभाल कर पाती हैं। स्वास्थ्य में हमें संतुलित भोजन लेना चाहिए जिसमें भोजन के सभी अवयव पर्याप्त मात्रा में हों, विटामिन्स हों, मिनरल्स हों, रोज अच्छी गहरी नींद करें, व्यायाम करें, तो इसके लाभ से हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन अगर हम शरीर की बात करते हैं तो महिलाओं का ध्यान अपने शारीरिक सौंदर्य पर भी रहता है और आज हम देखते हैं कि इसके कारण ही जगह जगह पर ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं, तो महिलाएं जो हैं वो फैशन के द्वारा या सौंदर्य प्रसाधनों के द्वारा अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने की कोशिश करती हैं। कुछ हद तक वो उसमें सफल भी रहते हैं। आज हम देखते हैं कि इतनी बड़ी सौंदर्य की इंडस्ट्री है, उसका कारोबार है, हर साल ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है जिसमें मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स चुने जाते हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध भी होते हैं। लेकिन जो सौंदर्य है वो वास्तव में हम कहेंगे तभी तक व्यक्ति सुंदर लगता है जब वो आंतरिक रूप से प्रसन्न रहता है, उसके अंदर आत्मविश्वास है, तो उसके मुख पर उसकी कांति होती है। लेकिन बाहर से सुंदर और अगर कोई मन से कुरूप है, अगर उसके मन में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा है, तो थोड़े समय में ही फिर ये भ्रम टूट जाता है। और वास्तविक जो सौंदर्य है वो गुणों का ही सौंदर्य है, या हम कहेंगे चरित्र की जो सुंदरता है वो स्थायी सुंदरता है। तो महिलाओं को विशेष रूप से केवल बाह्य सौंदर्य नहीं लेकिन अपने आंतरिक सौंदर्य के विकास का भी प्रयास करना चाहिए। मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक विकास ये भी हमारे जीवन के अन्य पहलू हैं। तो मानसिक रूप से सशक्त होना अनिवार्य है। जो भी जीवन में परिस्थितियां आती हैं, अनेक चुनौतियां, समस्याएं हमारे जीवन में आती रहती हैं, तो उनका हम बेहतर तरीके से सामना कर सकें, उसमें हम सकारात्मक रहें, आशावादी रहें, तो हम कहेंगे कि हम मानसिक रूप से सशक्त हैं। लेकिन अगर हम उन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते, कई बार टूट जाते हैं, मुश्किल जीवन में जब स्थितियां उत्पन्न होती हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो कई बार डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, तो इसका मतलब हमें अपने मन को हम कहेंगे नियंत्रण करने की और मन को सशक्त करने की आवश्यकता है, और उसके लिए हमें विधियां अपनानी चाहिए जो आध्यात्मिक ज्ञान या हम कहेंगे योग अभ्यास करना वो हमारे मन को सशक्त बनाता है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो भाई बहने आते हैं वो इसका अभ्यास प्रतिदिन करते हैं। ऐसे ही बौद्धिक विकास हम देखते हैं, आज महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, वो समाज के सभी क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं, आज उनको अवसर मिले हैं तो उन्होंने अपनी योग्यता का बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन अगर वो कार्य करते हैं, वो बौद्धिक रूप से अपने आप को बेहतर समझते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जो उनके नैसर्गिक गुण हैं, जो प्रकृति प्रदत्त गुण हैं, उनके वो अवहेलना करने लगे। क्योंकि इससे कई बार दिखने में आता है कि पति पत्नी दोनों ही उच्च पद पर कार्य करते हैं तो फिर उनमें अहम का टकराव शुरू हो जाता है और इसके कारण परिवार टूटते हैं। तो जो एक माँ के गुण हैं, एक महिला के गुण हैं कि उसमें त्याग सेवा भावना होती है, ममता करुणा स्नेह की भावना होती है, उसको उसे बनाए रखना है तो फिर परिवार में वो संतुलन बना रहता है, तो वो अपने परिवार की जिम्मेवारियों को भी बेहतर तरीके से निभा पाती है। आज समय की मांग है कि वो भले समय के साथ चले, आज कार्य करने की आवश्यकता है तो अवश्य कार्य करना चाहिए, लेकिन वो संतुलन बना रहे। ऐसे ही भावनात्मक रूप से स्थिरता में हम देखते हैं कि कई बार अगर वो बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, किसी ने कोई बात कही और उसके मन पर उनका असर आ जाता है तो दुखी हो जाती हैं, परेशान होते हैं, कई दिनों तक उसका असर उनके मन पर चलता रहता है। यहाँ भी वो स्थिति बनती है कि कोई ना कोई हीन भावना उनके मन में आने लगती है। तो ये जो प्रभाव हैं, अगर लंबे समय तक रहते हैं तो फिर वही डिप्रेशन की स्थिति होती है, रोना आता है उनको। अगर वो किसी के सामने नहीं बोल सकते हैं तो कई बार फिर उस समय तो चुप रह जाते हैं लेकिन फिर पीछे छुप कर रोते हैं। तो ऐसे नहीं कि अपनी भावनाओं को दबाना है, दबाना भी नहीं है, उन्हें हम प्रत्यक्ष करें लेकिन सही समय पर सही रूप से हम प्रेम से अपनी बात कहें, हम शांति से अपनी बात कहें, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। लेकिन अगर हम इस तरह से घुटते रहेंगे, अगर भावुक हो जाते हैं तो फिर ये स्थिति उत्पन्न होती है तो निश्चित रूप से उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरे प्रभाव पड़ते हैं। आज मेडिकल साइंस कहती है कि 80% बीमारियां जो होती हैं वो साइकोसोमैटिक होती हैं। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक पहलू का भी ध्यान देते हैं, आध्यात्मिक पहलू में आता है कि हम आत्मचिंतन करें, आत्मावलोकन करें, अपना आत्मनिरीक्षण करें। तो जब हम आत्मचिंतन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारी कमियां कहाँ हैं, किन कमियों को दूर करके जीवन में वास्तव में हम उन्नति कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए रोज अपने आप को समय देने की जरूरत है। फिर हम अध्यात्म में अपने आत्मा में अंतर्निहित शक्तियों और गुणों का विकास करते हैं। आध्यात्मिकता हमारे अंदर त्याग सेवा भावना, संतोष परोपकार, सादगी सरलता, उत्साह हिम्मत जैसे गुणों का विकास करती है। तो ये सब गुण आंतरिक सौंदर्य बढ़ाने वाले गुण हैं। और अध्यात्म में हमारा संबंध परमात्मा के साथ भी होता है। तो जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो उसकी शक्तियां मन को मिलती हैं और उन शक्तियों के द्वारा हमारा मनोबल बढ़ता है। हमें ऐसा लगता है कि परमात्मा का हाथ हमारे सिर पर है, उनकी छत्र छाया है। तो जो आत्मशक्ति बढ़ती है उससे हम परिस्थितियों का सामना सहज कर पाते हैं। तो प्रतिदिन यदि हम कुछ समय अपने लिए निकालते हैं, जैसे कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है कि सुबह का एक घंटा हम स्वयं के प्रति दें, तो महिलाएं भी अगर सवेरे थोड़ा सा समय से पहले उठ करके अपने लिए अध्यात्म का अभ्यास करेंगी, ध्यान करेंगे, योग अभ्यास करेंगे, तो निश्चित रूप से वो आध्यात्मिक रूप से सशक्त होंगे, तो मानसिक और भावनात्मक रूप से तो स्वतः ही सशक्त हो जाएंगे। तो जीवन के इन सभी पहलुओं पर जब हम ध्यान देते हैं तो फिर हमें लगता है कि सही मायने में हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, हम संतुष्ट भी रहते हैं, सुखी रहते हैं, और जो हमारा परिवार है उसे भी हम संतुष्ट और सुखी रख पाते हैं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सविता जी का। ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय से उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के प्रति अपनी शुभकामनाएं दी। मैं आशा करता हूं कि इस सेशन में आपने जो भी बातें सुनी हैं, जो विचार सुने हैं, वो आपको प्रेरित करेंगे, मोटिवेटेड रखेंगे। और जहां पर भी हमारे घर में, हमारे आस पड़ोस में, जहां पर हम काम करते हैं, जहां पर महिलाएं हमारे साथ हैं, वहां पर उनके विकास के बारे में हम सभी सोचेंगे। महिलाओं के विकास के लिए जरूरी नहीं कि आप महिला हो तो ही उनके बारे में सोचें। समाज के हर वर्ग का महिलाओं के विकास के लिए एक अनूठा योगदान बनता है। इस सेशन में बस इतना ही। आज शाम को फिर से 6 बजे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।